Recording
in progress.
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحانه وتعالى بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. जैसे इस क्लास को हम हदीस मुबारका से शुरू करते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, अशरे मुबशरा वाला टॉपिक अच्छा है ना, क्योंकि खुलफाए राशिदीन तो मुकम्मल हो गए, चारों का हमने पढ़ लिया और पांचवें जो हमने शुरू कर लिए थे और पिछली क्लास में हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया, हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। तो अब छठे का पढ़ने से पहले हम ये हदीस मुबारका एक दफा फिर दोहरा लेते हैं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة بس زبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وقال قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تو جیسے کہ حدیث میں آپ نے ترتیب بھی سن لی کہ نبی علیہ السلام نے جو جنت کی بشارتیں دی اس والی حدیث مبارکہ کے اندر، تو اس کی ترتیب بھی کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا. اسی وجہ سے ظاہر ہے ہمارے حضرت نے بھی جو اشرف بشرا کے ٹاپک پہ بیانات فرمائے تو ان میں پھر چھٹے نمبر پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. تو آج ہم سے انشاءاللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ کسی کو کچھ پتا ہو تو تھوڑا بہت ہمارے ساتھ شیئر کریں، اگر آن لائن بھی اور آن سائٹ بھی. زبیر خان کے بارے میں بسائڈ دس جو کہ ہم نے ابھی پڑھ لی کہ وہ واشر ہے، وہ بشر ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، اور کوئی تو انکلز تو ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ سے آپ کہہ رہا ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہماری ایک حدیث آ رہی ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. اور ان کے بارے میں کوئی مشہور بات؟ جی، ان کی بہادری بہت مشہور تھی، بہادر تو ماشاء اللہ ساری صحابہ تھے. اور میرا میں وہ ان کو تو نہیں بتائے تھے، وہ تو کون سے کو بتایا. تو ہم پھر کتاب سے ہی دیکھتے ہیں اور چند ایک اور ایکسٹرا باتیں جو کہیں سے دے رہی ہیں، وہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے فرسٹ کزن تھے. ٹھیک ہے، فرسٹ کزن. فرسٹ کزن کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ چچا کا کی اولاد ہو یا پھپھی کی اولاد ہو یا خالہ کی اولاد ہو یا ماموں کی اولاد. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ فرسٹ کزنز ہوتے ہیں آپ کے. باقی پھر دوسرے لیول پہ جو پھر وہ سیکنڈ کزنز کہلاتے ہیں، پھر تھرڈ کزن بھی کہلاتے ہیں. تو فرسٹ کزن تھے نبی علیہ السلام السلام کی. کس طرح سے؟ کہ نبی علیہ السلام السلام کی ایک مشہور ترین پھپھی تھی، ٹھیک ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کثرت کے ساتھ کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام السلام کی چھ پھپھیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، چھ پھپھیاں ہوتی ہیں. پھپھی کس کو کہتے ہیں؟ ابو کی بہنوں کو پھپھیا کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو آپ السلام کے ابو خواجہ عبداللہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس حدیث کے مطابق ہم ان کو ان کے اسلام لانا مانتے ہیں تو وہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہلائیں گے حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے، تو خواجہ تو کہنا ویسے بھی ہے، خواجہ یعنی عزت کے ساتھ ہے نا، ٹائٹل جیسے انگریز کہتے ہیں نا سر. ٹھیک है, उसी तरीके से उर्दू जुबान के अंदर और फारसी जुबान के अंदर ख्वाजा कहा जाता है किसी को इज्जत का टाइटल देने के लिए। तो वो हजरत अब्दुल मुतालिब के बेटे थे और उनके 6 बहनें थीं। तो उनमें से एक सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा मशहूर तरीन है, जो कि पक्की मुसलमान हुई थी और बहुत बड़ी आला दर्जे की मुसलमान थी। एक आतिका है, आतिका का कंफर्म नहीं है कि वो मुसलमान हुई थी कि मुसलमान नहीं हुई थी, और बाकी 4 का कंफर्म है कि वो मुसलमान नहीं हुई थी। जैसे कि एक बर्रा इनके नाम की फूफी थी, वो मुसलमान नहीं हुई थी। तो सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ये फूफी थी, लेकिन फूफी कैसे थी कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की ये सौतेली बहन, सौतेली बहन यानी क्या मतलब हुआ कि इनके जो अब्बू थे ना नबी अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुतलिब, ठीक है, तो उनके अब्बू की एक शादी से जो बच्चे हुए थे वो ज्यादा तादाद में थे, जिनमें अबू तालिब भी थे और वो अबू लहब भी उन्हीं के औलाद में से था, उन्हीं बीवी के औलाद में से था, और भी हारिस भी उन्हीं बीवी के औलाद में से थे। तो दूसरी बीवी जो थी ना उनकी औलाद में से कौन सी मशहूर शख्सियात थी? एक तो सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी, दूसरी हजरत रज़ियल्लाहु अन्हा थे, ठीक है, और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा कभी किताबों में लिखा हुआ है कि वो भी उन्हीं बीवी के औलाद में से थे, ठीक है ना। अलबत्ता अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा एक दूसरे टाइम में पैदा हुए थे, लेकिन हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ये ट्विन्स थे, ठीक है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स कभी एक साथ पैदा होते हैं ना, तो वो ट्विन्स थे ये दोनों। अच्छा, इन दोनों की पैदाइश जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 2 साल पहले हुई थी, ठीक है। तो हमजा रजान चचा तो थे, सफिया रजान हाँ फूफी तो थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से उम्र में ज्यादा नहीं थी, 2 साल बड़ी थी। आप में से कितने एक दूसरे के साथ 2 2 साल के बड़े होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं लगता, दोस्त होते हैं, बराबर ही के ट्रीट किए जाते हैं, तो 2 साल का खाली फर्क। ऐसा होता है आजकल भी खानदान कुछ ऐसे होते हैं कि खाला और भांजा जो होता है ना वो तकरीबन सेम एज के होते हैं, वो बेबी खाला होती है, फिर वो घर की हमारे यहाँ बेबी दादू होगी, तो वो और उनके जो सबसे एल्डेस्ट भांजे हैं ना उनमें और खाला में शायद 1 साल का फर्क है, तो ऐसा भी होता है। तो यही मामला निकले सलाम उनके दरमियान भी था। तो सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा फूफी थी, और अच्छा उनकी शादी जो है वो किससे हुई थी, ये भी एक अजीब इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो स्टोरी खैर नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी, नाम तो खैर मेरी बिना से निकल गया लेकिन अवाम, ठीक है ना, अवाम बिन खुवैलद, अवाम बिन खुवैलद, Does that ring a bell? ये फिर अवाम बिन खुवैलद कौन होंगे? खदीजा बिन खुवैलद रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाई थे, ठीक है, खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो कि पहली शख्सियत थी इस्लाम में दाखिल होने वाली, उनके भाई थे अवाम बिन खुवैलद, ठीक है। तो अवाम बिन खुवैलद जो थे वो सफिया रजी अल्लाह तआला के अन्हा के शौहर थे, ठीक है। इनकी एक पहली भी शादी हुई थी, पहले शौहर का इंतकाल हो गया था, फिर दूसरी इन्होंने शादी करी अवाम बिन खुवैलद से। अवाम बिन खुवैलद के बेटे पैदा हुए जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला, ठीक है, वाइट कोट होता तो शायद इसको लिख करके भी आपको बता देते हैं। तो फिर इस तरह से क्या हुआ कि खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा इनकी क्या बनी, जुबैर रजी अल्लाह तआला।
मैं
अच्छा,
तो हूँ
सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर थे, ठीक है, लेकिन नहीं इनके इस्लाम लाने का नहीं है जिक्र, तो हमने भी नहीं कहा और आप भी, ओके। तो लेकिन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये भाई थे, तो फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के क्या हुई है, जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की क्या हुई, फूफी हुई ना, तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की सगी फूफी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हुई, जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा क्या हुई, नबी अलैहिस्सलाम की फूफी। तो फूफियों का बढ़िया एक इंतजार चल रहा है, ठीक है। तो ये इनके जो है वो एक छोटी सी फैमिली स्ट्रक्चर बन गया। बाकी जाहिर है कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनके वालिद कौन थे, वो हजरत वो अब्दुल मुतलिब, और अब्दुल मुतलिब थे नबी अलैहिस्सलाम के दादा। अच्छा, अच्छा, सफिया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अब अल्लाह ताला ने किताब के अंदर एक ऐसी बात रखी है जो कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो पहले से आपको वार्न करना होगा, ठीक है? अब ये आई डिड नॉट राइट द बुक, ठीक है? और ये बुक क्या है, ये हजरत जी का बयान है। असल में मैंने हजरत जी को नहीं कहा था कि ये इस तरतीब में आपने बात करनी, ठीक है? तो मुझे ब्लेम नहीं कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला की भी तो काम होता है करने के, तो अल्लाह ताला ने काम करवा दिया। सही है, पहेलियां बूझ रहे हैं आप, तो अभी सोच रहे हैं कि आप पहेलियां बूझ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो सुनिए, आपको इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हजरत जी नाम फरमाते हैं कि हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मजबूत शख्सियत वाली औरत थी, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग वुमन थी, ठीक है? शख्सियत, पर्सनालिटी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहे, लेकिन इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, और हिम्मत और हौसले वाली थी, ठीक है? वो बचपन में अपने बेटे को अच्छी तरबियत देती थी, ठीक है? यानी हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु को इनकी वालदा अच्छी तरबियत देती थी, ठीक है? आगे हजरत जी फरमाते हैं, दामन बरकात हम, क्या फरमाते हैं कि चुनाचे छोटी सी गलती होती थी तो बहुत तंबीह करती थी, छोटी सी गलती होती थी तो बहुत तंबीह करती थी, बल्कि कई मरतबा पिटाई करती थी, बल्कि कई मरतबा जुबैर अशरय मुबशरा सहाबी की पिटाई कर दी थी। उनकी भी पिटाई होने वाली लेकिन सर बड़ा कर रहा हूँ, तो इतनी पिटाई करती थी कि रिश्तेदार भी कहते थे कि ये कैसी जालिम माँ है जो बेटे को इतना मार रही है, ठीक है? तो आगे तो फिर आएगी आप लोगों के मजे की बातें, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको वॉकर करते हैं। ये जो पिटाई करती थी वो तरबियत के लिए पिटाई करता, ठीक है? ताकि मेरा बच्चा जो है ना वो बुरी आदतों में ना पड़ जाए, मेरा बच्चा जो है वो चुन्नू मुन्नू पप्पू लड्डू, राइट? आजकल अम्माएं क्या करती हैं, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा पप्पू, मेरा लड्डू, मेरा दुलारा, आंख का तारा, आओ जरा मैं एक दफा और पप्पी कर लूं, बेटा किसी को मार के आया, आओ जरा मैं एक दफा और पप्पा कर लूं इसको, फिर मारना दोबारा जा करके। कहती नहीं है, लेकिन बेटा तो ये समझेगा ना कि अगर एक दफा मारने पे मुझे पप्पी किया जा रहा है तो मैं दूसरी दफा जो लगा गया हूँ अम्मा से दो और प्यार मिलेंगे मुझे, ठीक है? तो ऐसे जो है ना फिर औलाद बिगड़ जाती है, और फिर वो औलाद फिर दूसरों को अजियत पहुंचाती है, जितना मार सकती है उतना मारती है, और जहां नहीं मार सकती तो वहां फिर उनको बैड वर्ड्स कहती है, बुरे अल्फाज कहती है, ठीक है? और असियत का सबब बनती है, फिर और भी मसले बनते हैं, ठीक है? और फिर ये बड़ों के लिए सर का दर्द बन जाती है, ठीक है? मुसीबत बन जाती है। तो इस वजह से अम्मियों को जो है ना वो हम आज सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहे, हम मदर जी की बात पढ़ के खाली सुना रहे हैं कि भाई आपने जो है ना वो बच्चों की उल्टी सीधी हरकतों के ऊपर उनको लाड प्यार नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, लाड प्यार तो बहुत दूर की बात, सिर्फ उनको बिठा करके समझाना भी नहीं, ठीक है? उनको कुरान हदीस की दलीलें दे करके समझाना नहीं है, बल्कि उनके साथ सख्ती से पेश आना है, सख्ती से पेश आना। ये नहीं कि मैं तो रोज समझाती हूँ, लेकिन फिर भी जाकर ये तमाशा करके आ रहे होते हैं, ये समझाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है? आपके साथ सख्ती से पेश आना है, और ये किसको पेश आना है, अम्मी हुजूर को पेश आना है, ठीक है? तो बेटे ने किसी को गंदा लफ्ज कहा है, किसी को मारा है, या गैंग अप करके मोहल्ले के किसी तीसरे बच्चे के खिलाफ हो गए हैं, ठीक है? या इस किस्म की कोई उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकत करके आए हैं, तो करना क्या है कि उनको जबरदस्त तरीके से तंबीह करनी है कि आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने काम किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने काम किया। अच्छा, ये काम खाली नहीं, झूठ बोला, बच्चे माशाल्लाह अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, बच्चे आके बोलते हैं मैंने ये स्टोरी दी किसी को, और फिर बाद में खुद भी बताते हैं ना, ये मैंने झूठ बोला था और अम्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चा झूठ बोल के आ गया। झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? झूठ किसके हक की तलफी होती है? अल्लाह का हक मारा है उसने, ठीक है, अल्लाह का हक उसने मारा है, और अम्मा कहती है कोई नो प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसा नहीं, बल्कि ये कहना है आप लोगों को कि आपने झूठ बोला कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने झूठ बोला, और उनको ऐसे आंखों में आंखें डाल करके आपको जो है ना वो जबरदस्त तरीके से डांट पिलानी है कि आपकी हिम्मत ना हो कि आप दोबारा झूठ बोल सके, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप दोबारा झूठ बोले, ठीक है। और अगर आपने झूठ बोला या अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा काम किया ना, तो फिर आपकी खैर नहीं। ये सारे उर्दू जबान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे जुमले हैं, आपकी खैर नहीं, आपको टाइम आउट दिया जाएगा, आपसे जो है ना वो आपकी सबसे जो डिलिशियस चीज है ना, सबसे जो प्रेशियस चीज है ना, वो आपसे ले ली जाएगी, चाहे वो प्ले स्कूल जाना हो। फिर बच्चे माशाल्लाह प्ले स्कूल में बड़ा एंजॉय करते हैं। नो मोर प्ले स्कूल फॉर यू, नो मोर प्ले स्कूल फॉर यू, एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक है। पिटाई करने की नौबत आनी नहीं चाहिए बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए पिटाई करने की, लेकिन इफ इट कम्स टू दैट तो आपकी स्पैंकिंग भी हो, आपको मारा भी जा रहा है, इफ इट कम्स टू दैट, यानी अगर आप नहीं सुधरे ना तो आपकी पिटाई भी हो। ऐसे इंसान बनते हैं। अब्बा तक बात नहीं जानी चाहिए, अब्बा का दूसरा मसला होता है या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, या जब गुस्सा आता है तो फिर जमीन आसमान एक कर दिया, ये तमाशा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अम्मा को सपोर्ट करना है अब्बा ने, अम्मा ने ये काम करना है और अब्बा ने अम्मा को सपोर्ट करना है, समझे आप, ठीक है। हाँ, आप करें जो आप कर रही हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आई एम 100% विद यू ऑन दिस, 100%। तो ये सारे तमाशे जो है ना, किसी को बाथरूम में बंद कर दिया, किसी को गंदी तरीन गलीस तरीन गाली दे दी, तो बताते हैं हमें आकर के, चाहते नहीं उन लोगों से बातें सुनना, लेकिन बताना पड़ता है ना, किसी को तकलीफ दे करके आ गए, किसी को झूठ बोल करके आ गए, किसी के खिलाफ गैंगअप करके आ गए, तीन बच्चे गैंगअप कर रहे हैं पांचवे के खिलाफ, उससे पिटे थे तो अब उसका ये तरीका है, अगर उसने आपको मारा था तो उसका ये तरीका है कि जब आपके पास ज्यादा ताकत आएगी तो आप उसको मारेंगे जाकर, ये तो जानवरों का काम है ना, इसको कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट्स। क्या कहते हैं इसको? एनिमल इंस्टिंक्ट्स, जानवरों का ये तरीका है कि जब मौका मिलेगा तो अब मैं उसको अजियत पहुंचाऊंगा, ये इंसान का तरीका नहीं है, ये इंसान के बच्चे का तरीका नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो अम्मा ने ये सारे काम करने हैं, जब तक घर से बना, फिर बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वक्त निकल जाता है, फिर उसके बाद वो अजियत ही पहुंचा रहे होते हैं, फिर मम्मा करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, तो भाई छोटे बच्चों को ये काम करना होता है, और छोटे में ही ये सारी इसलाह होती है, जिसने छोटे में इसलाह नहीं करी, बड़े होते हैं के बाद वो इसलाह नहीं हो सकती उसकी ना। और दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुन लो, एक साइड ऑफ द स्टोरी है ना, किसी को अजियत पहुंचा करके आया, किसी को बुरा वर्ड करके आए, किसी को करके आए, एक दूसरी साइड भी इसकी होती है, उस तो साइड को क्या कहते हैं? टच मी नॉट, एक दूसरी साइड होती है टच मी नॉट वाली साइड, छुई मुई वाली साइड, ठीक है। तो वो दूसरे जो के अब्यूसिव नहीं होते हैं ना, तो फिर वो जो होते हैं वो दूसरी साइड पे, वो उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसी क्यों देख लिया, उसने मुझे ये क्यों नहीं कहा, राइट। ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, और इस बुराई की भी इलाज की जरूरत है, इस बुराई की भी इस्लाह की जरूरत है, समझे। तो ये टच में नॉट होना जो है ना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, आप दूसरे जो है वो उनको मजाक उड़ाए ना, उनको तो दो बात लगाएंगे, तो ताने देंगे, वो तुम तो टच में नॉट, पता है इस क्लास के बाद ऐसे हैं लोग आप में से, अनफॉर्चुनेटली अपने ऊपर अजाब जो है वाजिब कर रहे हैं खाली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लड़के ही अपने ऊपर अजाब वाजिब कर रहे हैं सेलेक्टर करने करके, उनको अंदाजा नहीं है कि वो कर क्या रहा है। क्लास खत्म होगी बाहर जाकर के फौरन शुरू हो जाएंगे, वो तो तुम तो टच मी नॉट हो, वो जो कह रहे थे ना वो तुम्हें कह रहे थे, तुम टच मी नॉट हो। वर्बल अब्यूज शुरू हो जाएगा। जुबान अल्लाह ने इसलिए दिया तुम्हें, कल को अल्लाह ताला तुम्हें गुंडा कर देगा तो तुम क्या करोगे उस जुबान का, क्या समझते हो? जुबान मिली है तो तुम्हें ऐसी ही मिलती रहेगी, बात करने की सलाहियत ऐसी रहेगी तुम्हारे पास, क्या समझते हो? तुम्हें अल्लाह ने इसलिए सब जुबान दी है, दूसरों को जो है वो बुरी बुरी अल्फाज कहते रहो। अल्लाह ने दी है, तुम्हारे बाप ने दिया तुम्हें जुबान, तुम्हारी माँ ने दी है तुम्हें जुबान, किसने दी है जो तुमसे जुबान वापस नहीं लेगा? क्या जहालत है ये, इतना इल्म, इतना दीन, इतनी क्लासेस, इतनी मारिफत, इतना हजरत जी हजरत जी हजरत जी के तमाशे, और उसके ऊपर ये हाल किया हुआ है, जुबान काबू में नहीं है। समझते हैं पता नहीं है तो हम पेमेंट करके आए अल्लाह ताला के पास ना इस जुबान की। तो क्लास खत्म होने के बाद ये तमाशे नहीं होने चाहिए, और ना क्लास खत्म होने के बाद ना उसके बाद, बंद करें ये तमाशे। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, ये दीन का एक अल्लाह ताला ने माहौल बनाया है, जब आप ऐसी हरकतें करते हैं शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है, वो दूसरों को गुमराह करता है कि यार ये दाढ़ी टोपी वाले जब ऐसी बातें करते हैं तो इस दीन का फायदा क्या है? शैतान को मौका मिल जाता है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब आप नर्स किसी दूसरे के ऊपर देखते हैं, या किसी दूसरे को ऐसे अब्यूज करते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को, या बेहुदा किस्म की बातें करते हैं, बेहुदा किस्म के मजाक करते हैं, आपको पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला सब सुन रहा होता है, पर अल्लाह ताला फिर बता भी देता है आगे जाकर के इसने ये बेहूदा बात करी थी, उसने ये बेहूदा बात करी थी, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, किस लड़के ने किसको कौन सी वाली गलीज बात करी थी? ये दाढ़ियां वाले, ये टोपियां वाले, ये जुब्बे इमामे वाले, ये हजरत जी वाले, ये हजरत जी वाले ये करते हैं। तो जो हजरत जी से बदसन होगा वो आपकी वजह से बदसन होगा, तो कहीं जहन्नुम के अंदर वो आपको घसीट के अपने साथ में लेकर के जा रहा हो, अकेला नहीं जाएगा फिर वो जहन्नुम के अंदर, वो आपको साथ ले करके जाएगा। ठीक है, तो ना छुई बनने की जरूरत है, उसने ये कह दिया आप रोते फिर रहे हैं, ना ये तमाशे करने की जरूरत है, और ना जो है वो जालिम बनने की जरूरत है। और ये सारी बातें बच्चियों की तरफ भी जाती हूँ, वहां पे अलहमदुल्ला इतने बड़े मामला नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ इस जुलम की हरकतें जाए, वो झूठ बोलने का मामला तो बच्चियों में बहुत चल रहा है। क्या इस दीन का काम भाई, अल्लाह का ही हक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस दीन का? खाली किताबें पढ़ पढ़ा करके, ये किताब ही नहीं जन्नत में लेके जाएंगी, इन नबी अलैहिस्सलाम की ज्यारतें भी जन्नत में नहीं लेकर के जाएंगी। जन्नती अमान में से कोई कोई अमल है? फलाने साहब ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा था, चलो भाई जन्नत में जाओ, बड़ा नेक काम किया इसने, अब ये जन्नत वाजिब हो गई है इसके ऊपर। कोई ताल्लुक है इस काम का नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखने का जन्नत में जाने से? कोई ताल्लुक है? एब्सोल्युटली नॉट, कोई ताल्लुक नहीं है इसका जन्नत में जाने के साथ। जन्नती आमाल जो होते हैं वो इबादत, वो रियाजत, वो जिक्र, वो तकवा, ये है जन्नती आमाल। ख्वाब में ज़्यारत जन्नती आमाल नहीं है, बिल्कुल भी जन्नती आमाल नहीं है। और इसी तरह की कोई और भी बात अपने बारे में पता नहीं किस गुमान के अंदर उतर होकर बैठे हुए हैं, अखलाकी के साथ जन्नत में कोई नहीं जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी अम्माओं ने तो क्या करना था आपके साथ, प्लानिंग कर दिया इस वक्त। ठीक है, याद रखिएगा इस वाली बात को, और ये मत समझिएगा कि कोई बात नहीं, एक कान से सुन लिया दूसरे कान से, तो बकते ही रहते हैं, तो और कोई काम ही नहीं है। मैंने आपका हिसाब नहीं करना, मैंने आपका हिसाब नहीं करना, मैंने आपका फैसला नहीं करना, मेरा काम है आपको पहुंचा देना, और जिसने फैसला करना है ना उससे आप छुप नहीं सकते, उससे आप छुप नहीं सकते। ठीक है, और ये सारी बात जो है वो अम्मा अब्बा के लिए भी है कि भाई अम्मा अब्बा आप अपने ख्याल मनाए, यार ये औलाद इस किस्म की बन गई ना तो आपके लिए अजाब जारिया बनेगी, सवाब जारिया नहीं बनेगी ये वाली औलाद। ठीक है, तो सारा दीन जो है ना वो धरा का धरा रह जाएगा उसको, अगर ये अजाब जारिया का सबब बन गई तो। सफी रतान के बारे में फरमाते हैं कि चुनाचे उन्होंने उनको खूब मुश्किल हालात में से गुजारा ताकि वो एक मजबूत शख्सियत बने। चुनाचे उनको दौड़ने भागने के लिए भी कहती थी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स का इंतजाम करते हैं, फुटबॉल का इंतजाम, कराटे का इंतजाम, फलानी चीज का इंतजाम, ताकि आप फिजिकली भी फिट रह सकें, मजबूत शख्सियत रह सकें, बन सके। चुनाचे उनको दौड़ने भागने के लिए कहती थी, और अपने बेटे को उन्होंने एक तरह से पहलवान होने की तरबियत दी थी। लिहाजा जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से बहुत मजबूत थे और मुश्किलात से निमटना जानते थे। मौलाना सज्जाद नोमानी दामर बता, तो आपने शायद हीरोज क्लास में सुना हो या नहीं अभी, तो बड़े हमारे अदब के भी खलुफा में से भी हैं और बड़े इंडिया के जो है वो मशाइख में से हैं। वो अपना वाकया सुनाते हैं एक दफा कि मैं छोटा था तो मैंने एक दफा ना अपनी अम्मी के सामने खाने के ऊपर एतराज कर दिया कि ये हूं जिसका सिमटा ना धुआं कड़वाना जिसको कहते हैं एतराज करना। कहते हैं कि मेरी अम्मी ने मुझे बिस्तर से बांध दिया, मेरी कमीज भी उतार दी, इतने छोटे थे, कमीज भी उतार दी, बिस्तर से बांध दिया और मुझे बांध कर छोड़ दिया उन्होंने। बहुत देर तक मैं बंद रहा, हत्ता कि मैंने माफियां मांगी तब कहीं जाकर के मेरी अम्मी ने मुझे खोला। ये नाज नखरे, ओहो मेरा बच्चा यही नहीं खाता, कोई बात नहीं बेटा मैं आपके लिए अलग खाना बनाऊंगी, पूरे घर के लिए अलग खाना बनाए, और ये लाडरे साहब या लाडरी साहबा के लिए अलग खाना बन रहा है। इससे आप नुकसान कर रहे होते हैं अपने बच्चे का, आपका नुकसान हो रहा होता है इससे, समझे? अंदर तमाशे छोड़ दें, किसी को बाथरूम में बंद करने की तो बिल्कुल खबर नहीं आनी चाहिए, और इस किस्म की कोई और चीज आपको कोई करे ना तो आपको पूछे जाकर के आपका क्या, फिर उसके बाद तमाशा बना उसके बाद अंदर। हजरत जुबैर जब ईमान लाए तो उनकी उम्र 15 साल थी, यानी बहुत छोटी उम्र थी। नबी अलैहिस्सलाम 40 साल के थे, बल्कि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम तो 42 या 43 ईयर्स के हो चुके थे जब दीन की दावत तो तबलीग शुरू करी। तो उस वक्त ये इस्लाम लेकर के आए, बिल्कुल साबिकून अव्वलून में से ये थे ना, ठीक है। तो 15 साल इनकी उम्र थी और मक्का मुकरमा की फिर पूरी जिंदगी 13 साल की थी, तो 15 प्लस 13 28 साल, तो जब हिजरत करी तो उस वक्त उनकी उम्र 28 ईयर हो चुकी थी। सबसे पहले तलवार उठाने का शर्म, एक दफा मशहूर हो गया मक्का मुकरमा में, सच्ची खबर नहीं थी लेकिन झूठी खबर मशहूर हो गई, नबी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उनको अंडर अरेस्ट। तो जब पता चला तो इतना उनको जोश आया कि अगरचे के उस वक्त इजाजत नहीं थी लड़ाई की, लेकिन इतना उनके ऊपर जोश गुस्से का, और ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का गुस्सा था जिस वजह से इसको आप बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, इतना जोश चढ़ा कि तलवार लेकर के बाहर निकल आए कि किसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हिरासत में लिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हालांकि उस वक्त इजाजत नहीं थी, लेकिन ये एक मोहब्बत की कैफियत थी जिसकी वजह से इनको उसके ऊपर गलत नहीं कहा जा सकता। तो चुनाची मोरफीन ने लिखा है, यानी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखा है कि ये इस्लाम में पहली दफा तलवार उठाई गई थी, पहली दफा। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, इतनी निडर शख्सियत, इतनी शुजात वाली और इतनी दलेर शख्सियत थे। उनको पता था कि हम थोड़े हैं, उनको पता था कि हर एक पर जुल्म हो रहा है, हर बंदा बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इस माहौल में भी तलवार लेकर निकल आना और मरने मारने पर तुल जाना, ये उनके जज्बे की तवील दलील थी। अच्छा, क्लास खत्म होने से पहले बस एक सवाल कि अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का मुकरमा की जिंदगी के अंदर सहाबा को तलवार उठाने की क्यों इजाजत नहीं थी, कि भाई जब उनके ऊपर जुल्म होता था और उनको या उनके किसी करीबी रिश्तेदार को, किसी भाई मुसलमान को तकलीफ दी जा रही होती थी, तो वो फाइट बैक क्यों नहीं कर सकते थे? हत्ता कि वो छोटे सी एक गुरिल्ला वॉरफेयर भी तो कर सकते थे ना। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है कि जब आपके ओपोनेंट जो हैं, आपकी एनिमी जो है वो बहुत बड़ी हो और आप बहुत थोड़े से हो, तो अब जो है ना आप गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। ये कौन सी पता नहीं वाली जनरेशन ऑफ वॉरफेयर थी जो हम पढ़ रहे थे उसमें, तो छुप छुप करके फिर आप अटैक करते हैं, छुप छुप करके अटैक करते हैं, ठीक है। तो मक्का मुकरमा के अंदर ठीक है भाई, वो एनिमी बहुत बड़ी थी और ये मुसलमान जो है वो बहुत थोड़े से थे, तो लेकिन तकलीफें और अजियतें और ये सब तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गुरिल्ला वॉरफेयर की इजाजत क्यों नहीं थी? इसका क्या जवाब होगा भाई? तो भाई तो
जो करते थे अल्लाह की तो हुकुम से करते थे, तब तक जो है
क्यों हुक्म था? ये तो पूछ है, ईमान की इब्तदाई तरबियत की जा रही थी, ईमान की इब्तदाई तरबियत की जा रही थी। अच्छा, और ईमान
उनको
उनको टेस्ट करने के लिए, अरे टेस्ट करने के लिए तो नहीं, लेकिन और भी कोई कह रहा था जी।
टेस्ट करने के लिए
नए लोग थे, दीन में आने वाले थे, तो उनके ऊपर सख्ती की जा रही थी, ठीक है, कि उनको फाइट बैक करने की इजाजत नहीं। इसका ताल्लुक जो आपके बड़े माशाल्लाह नौजवान बैठे हुए हैं और उनसे भी बड़े नौजवान बैठे हुए हैं या ऑनलाइन बैठे हुए हैं अगर, तो उनके दरमियान एक डिस्कशन आजकल बड़ी चल रही थी पिछली क्लासेस के अंदर, ये अब्दुल्ला।
तो आजकल लोग खिलाफत की बात करते हैं, खिलाफत जारी करनी चाहिए। उस वक्त ये लोग ईमान में पक्के नहीं हुए थे, अच्छे दोस्तों
ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पता था ये बात और नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बता दिया था कि एक वक्त आएगा जबकि इस्लाम को अल्लाह ताला हुकूमत अता फरमा रहे, गलबा अता फरमा देंगे दुनिया के अंदर, इस्लाम विल बी द पावर, ठीक है ना। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी बता दिया था कि उस वक्त जो लीडर्स होंगे ना, जो कि अमीरुल मोमिनीन होंगे, वो किन में से होंगे? कुरैश में से होंगे, मक्का मुकरमा वाले लोगों में से होंगे, ठीक है। अब इन लोगों ने, जो मक्का मुकरमा वाले लोग थे, इन्होंने जाकर के वर्ल्ड लीडर बनना था, खलीफा बनना था, अमीरुल मोमिनीन बनना था, तो जो ऊपर बैठा होता है ना, उसके पास बड़ी ताकत होती है, मिलिट्री होती है उसके पास, राइट, उसका हुक्म चलता है। अगर उसकी अच्छी तरबियत नहीं हुई हुई थी, अगर उसके नफ्स का तज़किया नहीं हुआ हुआ था, उसके दिल की सफाई नहीं हुई होती, तो फिर वो क्या करेगा इस पावर का? वो इस पावर के जरिए से फिर लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, जिसको वो दुश्मन समझेगा, अब उसको अजियत पहुंचाएगा, हद से आगे बढ़ जाएगा, जितना उसको सजा देनी चाहिए उससे बढ़ करके उसको सजा देगा, अपने पावर को वो एब्यूज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों की खूब, जिसको कुटाई कहते हैं, अंकल्स के साथ भी एक हमने आर्टिकल शेयर किया था, कुटाई की जा रही थी, जैसे आप लोगों की कुटाई करने की जरूरत है इस पर, ठीक है, कुटाई की जा रही थी ताकि ये ऐसे बन जाएं कि पावर को ये अब्यूज करने वाले ना बने, पावर का नाजायज फायदा उठाने वाले ना बने, ठीक है ना। मदीना मुनव्वरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मदीना मुनव्वरा में आजमाइशें आई, बेशक आई, लेकिन दे वर अलाउड टू फाइट बैक। वहां तो फिर गजवे भी हो रहे हैं, वहां तो जो है वो और भी एक पावर भी है, रियासत भी बन चुकी है। अंसारियों को लीडरशिप नहीं मिली, अंसार को लीडरशिप नहीं मिली, किसको लीडरशिप मिली? इनको मिली जो कि में गुजर करके कुंदन बन चुके, इनको फिर लीडरशिप मिली, ठीक है। ये कोई इनाम नहीं है इनके लिए, लीडरशिप मिल गई तुमने बड़ी पिटाई खाई, नहीं, इट वॉज ए नेसेसिटी फॉर देम, ये इनकी जरूरत थी। अगर ये इनकी तस्किया ना होता, इनके अपने लिए नुकसान दे रहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डांट पड़ रही थी, अगर आपकी कुटाई नहीं होगी, कुटाई का मतलब फिजिकल कुटाई की बात नहीं कर रहा, क्या आप टफली डील करना, अगर नहीं होगा तो भाई कल को जब आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो गुनाह किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जिसको आपने तकलीफ पहुंचाई है, गुनाह तो आपको मिलेगा ना। और गुनाह क्या होती है? पिटाई। अल्लाह ताला की तरफ से पिटाई मिली, किसको मिलेगी? आपको पिटाई मिलेगी। और अल्लाह की पिटाई जो होती है ना, अम्मी की पिटाई और अब्बू की पिटाई से बहुत ज्यादा खौफनाक पिटाई होगी, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब की और आप सब की उस पिटाई से हिफाजत फरमाए और हमें अच्छा, नेक, एक दूसरे के लिए रहमत का सबब बनने वाला इंसान बनाए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह। चलो।